मुझे एक संकल्प है, आज सवेरे से बाबा ने जो त्याग, तपस्या और सेवा, याद है ना, जिसमें कहा भी था कि बाबा को फॉलो करने के कितने पॉइंट्स, 9, 10, 10, वो तो हम बहुत बार निकाल चुके हैं और बहुत निकाले जा सकते हैं। पीछे 18 पॉइंट निकाले थे। सबसे बड़ी तपस्या कौन सी है? बाबा के भी शब्द हैं इसमें, अव्यक्त बाबा के, और खुद भी चिंतन करेंगे, कौन सी है सबसे बड़ी तपस्या, बोलो। बहुत तपस्याएं हैं हमारी, गिने सभी। पहली तपस्या है स्वयं को अशरीरी करने की तपस्या, माना जिसकी हमें बार बार प्रैक्टिस करके स्थिति बनानी है। दूसरी तपस्या है आत्मिक दृष्टि की, मुरली है ये अव्यक्त बाबा की। अब आप बोलेंगे तीसरी तपस्या, बोलो रामू, तुम्हें बोलना है अभी, तुम चुप ही रहते हो। तीसरी तपस्या सीमा बहन, हाँ ये भी बात तो ठीक है आपकी, मीठा बोलना पड़ता है। नष्ट मोहा होने की तपस्या, जिस तपस्या की मैं बात कर रहा था बाबा की अव्यक्त मुरली से, है बुद्धि को स्थिर करना, तुम्हारी गहन तपस्या है। बुद्धि बहुत इधर उधर होती है ना। पांचवी स्वमान की तपस्या, जो क्लास कराती हैं टीचर बहने वो लिख लें, काम आएगा आपको। छठी वेदों में है एक बात, हम सबके लिए भी वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, ब्रह्मचर्य सबसे बड़ी तपस्या है। हमारे लिए वो इतनी बड़ी तपस्या नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन फिर भी इसमें हम ब्रह्मचर्य की जगह जोड़ेंगे संपूर्ण पवित्र होना, बहुत बड़ी तपस्या, जिसमें हमें कदम कदम पर अपने को चेंज करना है, आगे बढ़ना है। छह हो गए, सातवीं बोलो अब योग अभ्यास, जो तपस्या का वास्तविक स्वरूप है योग, योग अभ्यास उसमें एकाग्रता, ये तपस्या। और आठवीं और सुनाएं, आठ हो जाएं। क्या बोलो, और भी बोलो। देखो एक तपस्या है व्यर्थ से मुक्त होने की, एक तपस्या है मैं और मेरे के त्याग की, दोनों को ही हम जोड़ लें, है ना, ये बड़ी सूक्ष्म। और मैंपन में सबसे सूक्ष्म बात कौन सी है त्याग की, बोलो, सबसे सूक्ष्म, जहां ज्ञानी और योगी भी कभी कभी असफल होते हैं। हाँ, सूक्ष्म में मान की कामना का त्याग, त्याग। अगर हम एक लिस्ट बनाएं त्याग की, पहले जितना त्याग होगा उतनी ही तपस्या होगी, और जितना त्याग और तपस्या है उतनी ही सफल सेवा होगी, निर्विघ्न सेवा होगी। बाबा की इस पर बहुत गहरी मुरली है अव्यक्त, ख्याल आती है, ख्याल आती है, बहुत गहरी मूल्य है। रिवाइज हो करा चुकी है पिछले साल ही, त्याग तपस्या और सेवा। निरंतर त्याग, बाबा ने तो कहा देवान का निरंतर त्याग, निरंतर तपस्या कराएगा। और बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया, जहाँ त्याग और तपस्या नहीं वहाँ सेवा भी नहीं होती। सभी ने महसूस किया होगा, मुझे तो बहुत डीप फीलिंग पिछले दो बाबा के मिलन में रही। क्या इतने सुंदर वाइब्रेशंस, जिनका पता वहाँ नहीं चलता जब हम बाबा के सामने बैठे रहते हैं, पर जब वहाँ से आ जाते हैं जैसे एयर कंडीशन से बाहर आ जाएं, तो पता चलता है वहाँ कितना अच्छा था। वहाँ तो बाबा के वाइब्रेशंस फैले रहते हैं। तो मैं सोच रहा था ये बाबा के वाइब्रेशंस हमारी कितनी सुंदर पालना है या नहीं, जिसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप ही पुरुषार्थ की उमंग रहेगी, आप ही अपनी कमियों को छोड़ने की तत्परता रहेगी, कुछ श्रेष्ठ पुरुषार्थ करें इसकी प्लानिंग रहेगी, कहना नहीं पड़ेगा। बहुत सुंदर पालना, वाइब्रेशंस की प्रभु पालना। मैं सोच रहा था आने वाले समय में हमारे कुछ सेवा केंद्र ऐसे ही वाइब्रेशन से संपन्न हो जाएंगे, ऐसे ही वाइब्रेशंस सेवा केंद्रों पर क्रिएट हो जाएंगे बहुत जगह, तो वहां आने वालों की सहज पालना होती रहेगी, किसी को कुछ भी नहीं करने की जरूरत, पालना होती रहेगी। आप ही आत्माएं खिंच खिंच कर आती रहेंगी, नहीं तो सेंटरों में क्या होता है, बहुत जगह हो ही रहा है, छुपी हुई बात नहीं, बहने बैठी हैं। 20 साल पहले जो स्टूडेंट थे तब भी 50 थे, अब उनमें से 5 ही होंगे, 45 तो विदाई ले गए, और 10 साल पहले अगर 50 थे उनमें से भी 25 ही बचे होंगे, 25 विदाई ले गए। इसमें कोई बहनों की गलती नहीं है, माया से युद्ध है ना, माया से युद्ध में कई आत्माएं थक थक के निराश होके जाती हैं, कोई हार हो खा के चली जाती हैं। लेकिन अगर ऐसे वाइब्रेशंस हो, अर्जुन भाई आप ही पालना होती रहेगी, माया को जीतने की शक्ति प्राप्त होती रहेगी। बाबा कभी कहा करते थे, एक टांग तो सबको है, दूसरी तुम्हें देनी है। अव्यक्त मुरली, ज्ञान तो दे दिया, उमंग भी आ गई उनमें चलने की, एक टांग तो मिल गई, लेकिन दूसरी टांग शक्तियां देना। तो हमें बुद्धि को स्थिर करने की तपस्या अवश्य करनी है, त्याग में, मानसान की इच्छा का त्याग। एक सूक्ष्म बात पे और ध्यान देंगे, इस बात को कोई कहता नहीं हमारी क्लासेज में, मैं आप सबके सामने कहता हूं आज, विकारों के जो सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं उनका त्याग, वासनाओं की सूक्ष्म इच्छाओं का त्याग, ये हमारे जीवन में पवित्रता की निर्मलता, उसकी दिव्यता को ले आएगी। और इस इच्छा को हमें समाप्त करना ही होता है, क्योंकि नहीं तो क्या होगा। आप सबको बाबा का महावाक्य याद दिला दूं, ये बात आगे चल के हम सबको बहुत याद रखनी होगी और अपने को सुरक्षित करना होगा। माया के 5 विकार और प्रकृति के 5 तत्व क्या करेंगे, फुल फोर्स से अटैक करेंगे। जिनके अंदर जिस विकार का अंश बाकी रह गया होगा वो बाहर आ जाएगा। एक बार बाबा ने बहुत अच्छा सीन दिखाया था, कहीं आग है उसके ऊपर राख ढक गई है, देखने वालों को नहीं दिख रहा कि आग है, राख बहुत सारी, इतनी ऊंची लेयर उसके ऊपर राख की आ गई है, तेज हवा आती है, राख उड़ जाती है और अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, इसी ने दिखाया था बाबा ने वतन में। तो कहा ऐसे जिसकी विकारों की अग्नि दबी होगी, जब विकारों के तूफान चलेंगे एंड में, तो वो उसको जागृत कर देंगे। तो हम सभी त्याग को भी सूक्ष्म रूप से लें। एक और त्याग बढ़ रहा है, एक और बात बढ़ रही है संसार में, जिसके त्याग की हमें भी बहुत जरूरत है। कौन सा विकार आजकल प्रबल हो रहा है? पहले मैंने ये बात कही आपको, लोभ। लोभ कहीं भी इच्छाओं का अंत नहीं, पैसे जितने हो गए वो कम हैं, वो कम ही है, इससे क्या होगा वाला? 50 लाख हो गए, अरे 50 लाख में तो एक मकान ही आएगा, फिर खाली 5 करोड़ हो गए, ये तो बहुत कम, एक अच्छी सी कार लेनी हो ये तो खत्म हो जाएंगे। इच्छाओं का अंत नहीं है। और क्या याद रखेंगे हम सभी? देखो, जिनको श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, दो सुख हैं संसार में इस समय, या तो सांसारिकता का सुख, कितना सुख है वो तो हम जानते हैं, या ईश्वरीय सुख। ईश्वरीय सुख कौन सा चाहिए खुद निर्णय करेंगे, बिल्कुल डिसाइड करें, विचार बना लें, मुझे यही सुख चाहिए। पैसे का सुख चाहिए, धन संपदा का, तो ये सुख आपे ही छूट जाएगा। और अगर ये सुख प्राप्त करना है, ईश्वरीय सुख, तो उसको, ये तो नहीं कि पैसा हो ही ना, जीरो हो जाए, लेकिन उसके पीछे जो भागदौड़ है उसका त्याग करना पड़ेगा। सभी को ये चीज याद रखनी है और सिखानी है लोगों को। हम धन संपदा के पीछे भागें या धन संपदा हमारे पीछे आ जाए, सोचें सभी। एक बहुत अच्छा स्लोगन एक सेंटर में मैंने पढ़ा, मैंने वो बताया तो दूसरे सेंटर्स में भी वो लगा देखा मैंने अभी, वो है, धन संपत्ति तुम्हारी सर्वोत्तम दासी है, इसे तुम अपने मालिकिन न बनाओ। अगर तुमने इसको अपनी स्वामिनी बना दिया तो ये तुम्हें नष्ट कर डालेगी। तो एक ऐसी भी स्थिति है जिसमें धन संपदा सहज आ जाए, और वो स्थिति कौन सी है भाई? माता जी को बैठा लो जरा, कौन सी है वो स्थिति बोलो? नहीं, इच्छा मात्र अविद्या ही नहीं, और कुछ, एक स्थिति है वो, एक अभ्यास है। कौन हूं मैं? प्रकृति की मालिक, ईश्वरीय खजानों से भरपूर, जहां खुशी का खजाना बहुत है, जहां ज्ञान का खजाना बहुत है, जहां सुंदर संकल्पों का खजाना भरपूर है, धन संपदा सहज पीछे पीछे आएगी। देखो, हमें भगवानों वाच पर संपूर्ण विश्वास करना ही चाहिए ना। कुमार भी बैठे हैं बहुत, जिनको नौकरियां करनी होती हैं, अधर कुमार भी बैठे हैं। बाबा का ये महावाक्य है, जिनके पास ज्ञान धन बहुत है, उन्हें स्थूल धन कमाने में मेहनत नहीं लगेगी। एक मुरली है, मुझे सन याद नहीं, जिसमें चार शक्तियों का वर्णन है, धर्म की शक्ति, विज्ञान की शक्ति, ये ऐसी शक्तियों का वर्णन है। तो हमें श्रेष्ठ स्थिति पर ध्यान देना है। एक भविष्य का उदाहरण हम ले लें, पैसा लोगों के पास हो या होगा, और मान लो बाजार में दूध आ ही नहीं रहा, तो पैसा क्या करेगा? सब्जियां आ ही नहीं रही, ये स्थिति आनी है ना। तो पैसा काम आएगा? बीमार हैं, पैसा बहुत है, लेकिन दुकानों पर दवाई नहीं है। ये होने जा रहा है सब, कोई दवाई नहीं मिल रही क्योंकि सड़कें टूट गई हैं, ट्रक चल नहीं रहे हैं, माल आ नहीं रहा है, न दवाई सप्लाई होगी, न पेट्रोल सप्लाई होगा, न सब्जियां अन्न सप्लाई होगा, तो पैसा कम आएगा। अब दूसरी चीज देखो, स्थिति श्रेष्ठ है, हम प्रकृति के मालिक बने हैं, तो प्रकृति घर बैठे ही सब कुछ प्रदान करेगी। ये अविनाशी सिद्धांत हमें याद रखना है, प्रकृति के मालिक हैं हम। इसका क्या स्वरूप होगा? कई लोग सोचते इतनी बड़ी बात, प्रकृति जिसे संसार चल रहा है हम उसके मालिक, ये तो केवल संकल्प है, अनुमान है, अपने को खुश करने का एक विचार है, परंतु सूक्ष्मता से सोचेंगे, जो देह के मालिक बन गए, जो मन बुद्धि के मालिक बन गए, वो संपूर्ण प्रकृति के मालिक होंगे। और देह के मालिक का अर्थ है एक सेकंड में, यानी संकल्प करते ही अशरीरीपन की डीप अनुभूति, जो देवान से न्यारे हो जाए सेकंड में, फीलिंग होने लगे, डीप साइलेंस फील होने लगे, ये देह अलग मैं अलग, वो देह के मालिक, वही प्रकृति के मालिक। जो मन बुद्धि के मालिक, वो प्रकृति के मालिक। आप चाहें तो मुरली पढ़ सकते हैं, 69 दिसंबर की है, 69 दिसंबर में जो भी सब पुरानी बहनें थी, दादियां, उन सब की यहाँ एक भट्टी हुई थी और उस समय उनकी संख्या थी 80। तो बाबा ओपनिंग में भी क्लास कराते थे, बाबा ही ओपनिंग में आते थे और बाबा ही क्लोजिंग में। तो उनकी भट्टी में जब बाबा शुरू में आए थे पहले दिन, तो बहुत सुंदर मुरली है, वो सबको पढ़ लेनी चाहिए। मुझे डेट अभी याद नहीं आ रही, दिसंबर की है, 3-4 मुरली होंगी दिसंबर की, 21 दिसंबर या कुछ है। एक तो उसमें है, कुछ आत्माओं की मृत्यु भी सर्विसेबल होगी, उन्हें सर्विस का मेडल प्राप्त होगा, मृत्यु से भी सर्विस का मेडल। और उसमें सबसे गुह्य बात है, अश्रतन कौन होंगे, पांचवी डोनर कौन होंगे, और उसका उत्तर है जो सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। बहुत अच्छा डिटेल है उसमें, आप पढ़ें उसको। तो वही आत्माएं प्रकृति की मालिक भी बनेंगी, और यही त्याग होने के बाद बाकी सारे त्याग सहज हो जाते हैं। जब आत्मा को इससे ईश्वरीय सुख मिलने लगता है, तो कर्मेंद्रियों का रस, सांसारिक सुख, मान सम्मान का सुख, ये सभी छोटा प्रतीत होता है। उन्हें दिखाई देगा, कोई हमें मान दे भी दे, हमारा नाम हो जाए, उसकी खुशी कितनी देर रहती है भला। असली खुशी तो ये है, असली सुख तो ये है। तो अतींद्रिय सुख इसमें आ जाएगा। सभी ने बाबा का ये महावाक्य सुना है, अतींद्रिय सुख पूछना हो तो उन आत्माओं से पूछो जो आत्माभिमानी बनकर रहते हैं। इसमें सब त्याग हो जाएगा, इच्छाओं का भी त्याग, कामनाओं का भी त्याग। कामनाएं होती है मनुष्यों से और इच्छाएं होती है वस्तुओं की। तो ऑटोमेटिकली हमें किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ये प्रैक्टिकल नेचुरल स्थिति आ जाएगी। तो हम सभी ने एक काम रखा था, सबको याद हो, हर घंटे क्या प्रैक्टिस करनी है, आत्मा की अशरीरी होने की। किन किन की चालू है जरा हाथ उठाएंगे? बहुत अच्छा, बहुत कर रहे हैं, आगे वाले कर रहे हैं हर घंटे। वो तो रिमाइंडर है ना, गीत बजा शांति की, शक्ति से और हम स्थित हो गए। और 3 मिनट का जब गीत बजता है तब क्या करेंगे, 500 रूपों का अभ्यास, सकाश देने का अभ्यास, प्रकृति को सकाश देना, कभी दुखी आत्माओं को सकाश देना। 5-6 बार के लिए अलग अलग संकल्प भी रख सकते हैं, कभी मुझे शांति फैलानी है तो कभी प्रकृति को पवित्र वाइब्रेशंस देने हैं, तो कभी समस्याओं में उलझी हुई आत्माओं को शक्तियों की किरणें देनी है।